الحمد لله وكفى. الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. فكلوا مما ذكر اسم الله، فكلوا مما ذكر اسم الله، سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس کے حکموں پر ایمان رکھتے ہو. تو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکمن فرما رہے ہیں، اور یہ ایک نہیں، ایسی اور بھی آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جانور حلال اس وقت ہے جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے. اس لیے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام اگر نہیں لے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، چاہے وہ بکری کیوں نہ ہو یا چاہے وہ گائے بیل کیوں نہ ہو، جو کہ حلال جانور ہے. اور اگر جانور ہی حلال نہیں ہے، مثال کے طور پہ کتا ہے جو کہ حلال نہیں ہے، تو اس کو اگر ذبح کیا جائے گا اور اللہ کا نام بھی لیا جائے گا تو بھی وہ حلال نہیں ہے. گدھے کو اگر ذبح کر دیا جائے گا اور اللہ کا نام لیا جائے گا تو بھی وہ حلال نہیں ہے. اسی طرح شیر چیتے کو بھی اگر ذبح کرے اللہ کا نام لے کے تو بھی وہ ان کا گوشت حلال نہیں ہے. تو جانور بھی حلال ہونا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے. فش جو ہوتی ہے اس کو کاٹتے وقت اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی مچھلی ہے، مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو سمندر کی مچھلی ہے اس کے اوپر اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے. اللہ کا نام کس طرح سے لینا؟ مسنون الفاظ ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر. تو جس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے. دوسری ایک اور شرط بھی ہے، جانور بھی حلال ہو جیسے کہ ابھی بتایا گیا، اللہ کا نام بھی لینا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہو. کافر ہے، مشرق ہے، تو اس کا ذبح کیا ہوا بھی معتبر نہیں ہے. ہمارے ایک جاننے والے عالم دین ایم بی اے کرنے کے لیے برازیل تشریف لے گئے، اور انہوں نے آ کے یہ واقعہ سنایا کہ برازیل میں ایک کمپنی ہے جو حلال چکن بناتی ہے اور دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتی ہے. عالم دین تھے، اس چیز میں بڑا انٹرسٹ رکھتے تھے حلال حرام میں، تو اس فیکٹری پہ گئے. کہتے ہیں میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ آدمی جو تھا وہ ہر چکن کو کاٹتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ ضرور رہا تھا، مگر بات کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا. تو بڑے حیران ہوئے کہ کئی مرتبہ ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو جانور کے حلال ہونے کے لیے تین شرائط ہیں، اور ایک تو وہ سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ اس مبارک آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی ذبح کرتے وقت کہا جائے بسم اللہ اللہ اکبر. دوسرا، وہ جانور خود بھی حلال ہو، और हलाल जानवर जैसे बकरी है, गाय है, ऊंट है, चिकन है, ये सारी चीज़ें हलाल हैं। और जो जानवर हलाल नहीं है, जैसे सूअर का गोश्त है, और मग़रिबी दुनिया में और चाइना में, मशरक़ी दुनिया में भी बहुत खाया जाता है ये, तो सूअर का गोश्त हलाल नहीं, कुत्ते का गोश्त हलाल नहीं, चाइना में कुत्ता बहुत खाया जाता है, गधे का गोश्त हलाल नहीं है, तो इसी तरह बहुत सारे जानवर, शेर चीते का गोश्त हलाल नहीं। तो अल्लाह का नाम लेना भी ज़रूरी है, जानवर भी हलाल जानवर हो, और तीसरी चीज़ ज़िबह करने वाला भी मुसलमान हो, तब जाके वो जो खाया आपने वो हलाल होता है। ये हलाल और हराम कितना अहम कि अल्लाह कुरान में अपने अंबिया को फरमा रहे हैं कुलू मिन तय्यिबातिन वअमलू सालिहा, कि तुम हलाल खाओ और फिर नेक अमल करो। इसका मतलब है हलाल खाने का नेक आमाल के साथ बड़ा ताल्लुक है। अंग्रेजी में कहा जाता है यू आर व्हाट यू ईट, कि तुम वही हो जो तुम खाते हो। तो अंग्रेज़ों ने तो उसको हेल्थ के एतबार से कहा है कि अगर तुम हेल्थी खाना खाओगे तो तुम्हारी सेहत भी हेल्थी रहेगी। मगर ये हलाल आराम पे भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से फिट होता है कि यू आर व्हाट यू ईट, हलाल खाएगा तो तू हलाल काम करेगा, और हराम खाएगा तो फिर हराम काम करेगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने हलाल और हराम पे बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। आपने इरशाद फरमाया कि वो जिस्म जो हराम पर पलेगा उस पर जन्नत हराम हो जाती है। अल्लाहु अकबर। तो इंसान थोड़ा खा ले मगर हलाल खाए, हराम खाने पे लग गया, अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में आता है कि एक शख्स चीख चीख के अल्लाह से या रब कह रहा है मगर उसके पेट में हराम है, उसकी पुकार को अल्लाह ताला सुनते भी नहीं है। तो हराम खाने वाले की दुआएं भी कबूल नहीं, हराम खाने वाले के नेक आमाल भी कबूल नहीं, हराम खाने वाले का जिस्म नेक आमाल करने के लिए भी तैयार नहीं। ये हराम खाना ऐसा गुनाह है जो और बहुत सारे गुनाहों को जन्म दे रहा होता है। इंसान हराम अपने जिस्म में डालता है, बस आगे जिस्म और हराम काम करना पसंद करता है, तो म्यूज़िक सुनना पसंद करेगा, तो जिना करना पसंद करेगा, गीबत करना पसंद करेगा, जिस्म काबू में ही नहीं आएगा, बदनसरी करना पसंद करेगा। तो इसलिए मशाइख ने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जो शख्स हज़रत से बैत करता, हज़रत फरमाते हैं कि जी मेरी बैत का फ़ायदा तो जब है कि यहाँ मेरी खानकाह में रहो, बस जो मेरा खाना पीना है ना वो खाओ, आजकल बाहर खाना पीना हलाल नहीं है, क्योंकि जब हलाल खाते नहीं हैं तो असरात वो आते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुलू मिन तय्यिबात, हलाल खाओ और नेक अमल करो। मोमिन को हराम से ऐसे डरना चाहिए जैसे इंसान शेर से डरता है। बिल्कुल जो इस तरह करता है अपनी जिंदगी में बरकतों को देखता है, अल्लाह ने अगर थोड़ा भी दिया उसमें बरकत हो जाएगी। हमारे दोस्त ने अपने घर का वाकया सुनाया, कहने लगे कि हमारे जो दादा थे, पाकिस्तान जब बना तो हुकूमत ने बैंक लोन्स को आसान कर दिया था, थोड़ी सूद पर बैंक लोन मिल जाता था और वापस करने के टर्म्स भी बड़े आसान थे। तो मशहूर था कि पे एज यू अर्न, नया नया मुल्क बना था, उन्होंने कहा कि जी जैसे जैसे कमाते जाओ वैसे वैसे, यानी सूद तो सूदी कर्जा है मगर वापसी की तारीखों में आसानियां थी। तो बहुत सारे लोगों ने ये कर्ज़ा लिया, कहने लगे कि हमारे दादा ने भी ये कर्जा लिया, फैक्ट्री लगाई। चार भाई थे, उनके बेटे चार थे और बहनें थी, यानी हमारे चचा थे, वालिद थे और बहनें थी। तो सालों से फैक्ट्री ओनर्स थे, अमीरी वाली जिंदगी थी। हमारी फुप्पी की शादी हुई और शादी के बाद उन्होंने नेकी वाला रास्ता इख्तियार किया, हलाल को हलाल और हराम को हराम समझा। घर में किसी छोटे चचा की शादी थी, फुप्पी हमारी आई शादी में, मगर उन्होंने कहा खाना नहीं खाऊंगी तुम्हारे घर से, कि तुम्हारे घर का खाना हलाल नहीं है। भाइयों ने सुना ये बात तो हैरान हो गए कि तू बड़ी नेक औरत आ गई जो यहाँ आके हमको हलाल हराम का दर्स दे रही है। कह रहे हमारे दादा ने हमारी फुप्पी से कहा कि बेटा जिंदगी भर तो तू यही खाना पीना खा के बड़ी हुई है, अब तू उधर गई है ससुराल में तो आके ये वाली बातें हमें सुना रही। तो सब ने बड़ा इंसिस्ट किया कि थोड़ा खा ले। उसने कहा नहीं नहीं खा नहीं सकती है, ये हलाल नहीं है। कहने लगे कि हमारी फुप्पी उस दिन चली गई खाए बगैर। रात को चारों चचा और मेरे वालिद हम सब ने मिलके हमारे दादा के साथ मीटिंग की कि जी फुप्पी खाए बगैर आज चली गई, मगर बात सही कर गई कि जो कुछ है हलाल नहीं है। बैंकों से कारोबार, सूदी कारोबार, ये हराम है। कहने लगे कि हमने उसी वक्त चारों भाइयों और हमारे दादा ने फैसला किया कि फिर हम हराम को ख़त्म करते हैं, और उसका हल ये निकाला कि ये हमारे घर जो है इसको बेचते हैं और बैंक की सारी लोन्स वापस करते हैं। ये लेट 70s अर्ली 80s की बात है। उस ज़माने में बड़ी फैक्ट्री 2 लाख रुपए में लग जाती थी, आज तो 2 लाख रुपए कुछ नहीं है। कहने लगे कि हमारा घर 2.25 लाख रुपए का था, तो घर की जब कीमत लगाई गई तो 2.25 लाख मिल रहे थे। दादा ने हमारे 2.25 लाख रुपए में घर बेच दिया और सारे बैंक के लोन्स उतार दिए, और जिस आदमी से बिकवाया उससे कहा कि जी किराए पे कोई अब घर दिखा दो, तो किराए पे घर पे रहने चले गए सब, चारों चचा और हम सब और सबकी फैमिलियां किराए वाले घर पे चले गए। कहने लगे हराम छोड़ा, हलाल को इख्तियार किया। अल्लाह ने इतनी बरकत डाली, 6 महीने में मेरे दादा फिर काबिल हो गए कि वो कोई घर खरीदें। उसी स्टेट एजेंट से कहा कि कोई घर ढूंढ के दो। उसने कहा इस वक्त और कोई घर तो सेल पे नहीं है, वो जो आपने घर बेचा था वो सेल पर है, अगर खरीदना चाहें। मालूम किया तो वो 2.25 लाख में बेचा था और इस वक्त वो 2.25 लाख में मिल रहा है। तो हमारे दादा ने वो 2.25 लाख रुपए दे के 50,000 रुपए के फायदे पे उसी घर को वापस खरीदा और उसमें हम फिर रहने लग गए। तो इंसान हराम को छोड़ता है, अल्लाह ताला हलाल में बरकत डाल देते हैं, तो इंसान हराम से बचे। अकाबरीन ने तो हराम से बचने की इंतहा कर दी। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी ने खाना खिलाया, फिर आपके किसी एक साथी ने कहा कि हज़रत मुझे महसूस होता है कि इसकी आमदनी जो है मुश्तबा है। हज़रत सिद्दीक अकबर ने फरमाया भाई मुझे पहले बताते, आपने इतनी देर इंतज़ार भी नहीं किया, अपनी उंगली अपने हलक में डाल के कह कर दी, सारा खाना बाहर निकाल दिया। साथी ने कहा हज़रत ये क्या किया? ने फरमाया कि हराम को अपने जिस्म का हिस्सा नहीं बनाने दे सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हलाल खाओ और नेक अमल करो, हराम खाओगे नेक अमल ही मुश्किल हो जाएगा, बस फिर हराम काम बड़ा आसान हो जाएगा। और इंसान जब हराम कमाता है वो हराम पे लगता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल, और ये कौल सोने की स्याही से लिखने वाला कौल है, फरमाते थे कि हम इंसान की आमदनी का उसके खर्च को देखकर अंदाज़ा लगा लेते, कि वो उसकी आमदनी हलाल है या हराम। अगर उसका खर्च हराम चीज़ों पे हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी आमदनी भी हराम जरियों से आ रही है। वकाबरीन ने हलाल हराम का बड़ा एहतियात किया है। अल्लाह को राज़ी करने वाले लोग थे, दुनिया को समेटना उनकी ज़िंदगी का मकसद नहीं था, अल्लाह को राज़ी करना मकसद था। इसीलिए हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जी हलाल तो खाऊंगा ही सही, मगर खाना भी उसी के हाथ का खाऊंगा जो नमाजी हो। नमाजी आदमी पकाएगा तो उसके हाथ का खाऊंगा। तो कभी कभी सफ़र में होते और बेनमाजी का खाना होता, शदीद भूख भी होती मगर छोड़ देते। आपकी ज़िंदगी का ये मारकतुल आरा वाकया है कि हज के सफ़र पर चले गए, अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट या इस तरह की चीज़ें साथ ले गए, और बहरी जहाज़ का सफ़र था, एक महीने का सफ़र था। जहाज़ के ऊपर पता चल गया कि जी खाना बनाने वाला नमाजी नहीं है। हज़रत पूरा महीना उसको तरगीब तो देते रहे मगर आपने उसके हाथ का खाना नहीं खाया। जब जद्दा की बंदरगाह पे पहुँचे, जिस आदमी ने आपको रिसीव किया हज़रत की सेहत देखकर रोने बैठ गया, और फिर बड़ी ही लजाजत के साथ अर्ज किया कि हजरत हज के सफर पे थे, खाना तो हलाल था, चलो बेनमाजी था, और वो जो आ रहा था वो भी तो हज की तरफ, मक्का और मदीना की तरफ आ रहा था, यही समझ के खा लेते। फरमाया कि इस मुबारक जगह पर कुछ लेने के लिए आया हूं, हमारे पास जो कुछ है उसको गंवाने के लिए नहीं आया। अल्लाह, इंसान हराम खाता है, जो अंदर नेकी है गवां बैठता है। इसलिए हलाल हराम का ख्याल करना ये हमारे लिए बहुत अहम तरीन चीज़। मगर एक अहम बात इस आयत में और भी है कि सिर्फ अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि तुम उस जानवर को खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, बल्कि कहा कि उस जानवर को खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया अगर तुम ईमान वाले हो। इन कुन तुम भी आयाती ही मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह की निशानियों पे ईमान रखते हो तो फिर खाओ। इसका मतलब ये है कि जब इंसान हलाल नहीं खाता ईमान भी कमज़ोर हो जाता है, बेईमानी दाखिल हो जाती है। बड़ा सवाल ये है कि आज दुनिया हलाल आराम से खा क्यों लेती है, और मशायख ने इसका जवाब दिया कि इंसान इसलिए हराम खाता है कि इंसान के दिल में दुनिया की शदीद मोहब्बत होती है, इसी का नाम हिर्स है। दुनिया की हिर्स की वजह से, माल जमा करने के शौक की वजह से हराम की तरफ जाता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हरीस आदमी को अगर एक पहाड़ सोने का मिल जाएगा, उसने ये नहीं कहना कि जी काफ़ी है अब मैं अल्लाह अल्लाह करूँ इतना है कि ज़िंदगी गुजर जाएगी, ना ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो तमन्ना करेगा कि मुझे एक और पहाड़ मिल जाए। और फरमाया इस हरीस आदमी का पेट कब्र की मट्टी ही भरेगी। यानी ये ऐसी हिर्स, दुनिया की लालच, दुनिया का शौक, ये इंसान के दिल से उस वक्त निकलेगा जब कब्र में जाएगा। एक मरतबा ये बीमारी लग गई तो लग गई। अल्लाह ताला भी कुरान पाक फरमा रहे हैं अल्हाकुमुत्तकासुर, तुमको गफलत में डाल दिया माल के मुकाबले ने, कि मेरे पास उससे ज्यादा बेहतर घर हो, मेरे पास उससे ज्यादा बेहतर गाड़ी हो, मेरे पास उससे ज्यादा बेहतर कपड़े हो, मेरे पास उससे ज्यादा बेहतर फोन हो, मेरे पास उससे ज्यादा बेहतर हो। ये जो माल का मुकाबला है, अल्लाह ताला फरमा रहे अल्हाकुमुत्तकासुर, तुमको गफलत में डाल दिया इस माल के मुकाबले ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये कब्र तक जाएगी ये बातनी बीमारी, हत्ता कि तुम कब्र तक पहुंचोगे। कोई माई का लाल आपकी इस बातनी बीमारी को सीधा नहीं कर सकेगा। ये अल्लाह यूं फरमा रहे हैं। इसलिए ये दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, फिर इंसान कहेगा कि बस मैंने अल्लाह को राजी करना है, चाहे थोड़ा ही मिल जाए, अल्लाह राजी किसी तरह से हो जाए। हदीस पाक में आता है कि जो अल्लाह से थोड़े रिस्क पर राजी हो गया, कयामत के दिन अल्लाह ताला उससे उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माल के मुकाबले से मना कर दिया, कहा दूसरों की हसद ना किया करो, कि दूसरों के पास ज़्यादा है रहने दो, जायज़ ही नहीं है। हुक्मन फरमा दिया वला तो हासिदु, फरमाया सिर्फ दो चीज़ों में हसद जायज़ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर हसद करनी ही है ना, दूसरों के माल को दूसरों की चीज़ों को देख कर अगर बहुत ही दिल जो है वो परेशान होता है, फरमाया दो चीज़ों में तुम ये हसद कर सकते हो। एक फरमाया कि उस शख्स उस मालदार के लिए हसद कर सकते हो जो माल जो है वो नेकी के कामों में खूब खर्च कर रहा है, उस पे हसद कर सकते हो, उस पे तुम शदीद अपनी ज़रूरत या शदीद अपना शौक दिखा सकते हो कि काश मेरे पास भी माल हो और मैं भी यूं ही दोनों हाथों से गरीबों की मदद कर रहा हूँ, दूसरों पे खर्च कर रहा हूँ। तो कुछ मालदार अच्छे मालदार होते हैं कि जिनके पास माल तो होता है मगर वो माल दूसरों पे खर्च करते हैं। तो फरमाया दो चीज़, अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीज़ें जो हैं उसमें तुम शदीद शौक दिखा सकते हो, हसद दिखा सकते हो। एक उस शख्स से हसद दिखा सकते हो जिसके पास माल हो और वो माल दिन और रात खर्च कर रहा है नेकों में, नेक कामों में। और दूसरा फरमाया कि अगर हसद करनी है तो उस शख्स पे हसद करो जिसको कुरान आता हो और वो रात दिन कुरान की तिलावत करता हो। अल्लाह अकबर। तो काबिल हसद तो ये दो लोग हैं, आज हम अपनी हसद को कहाँ ले गए हैं। तो ये जो इंसान हराम की तरफ जाता है ये दुनिया की हिर्स की वजह से जाता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को इस दुनिया की मोहब्बत से पाक फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें तालिबे मौला बनाए, तालिबे दुनिया बनने से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हराम से हमारी हिफाजत फरमाए। यहाँ आके आज का सबक मुकम्मल होता है। यहाँ जिस एक मरतबा फिर तर्जमा करता है, आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا ان کنتم بآياته مؤمنین اگر تم کو اس کے حکموں پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کہ آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لے، آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے۔ عزیزو دوستو یارو दुनियादार फानी है। अजीजो दोस्तो यारो, ये दुनियादार फानी है। दिल अपना मत लगाओ तुम, कब्र में जा बनानी है। दिल अपना मत लगाओ तुम, कब्र में जा बनानी है। तुम आए बंदगी करने, फंसे लज्जाते दुनिया में। तुम आए बंदगी करने, फंसे लज्जाते दुनिया में। हुई अंधी अकल तेरी, तेरी कैसी जवानी है। हुई अंधी अकल तेरी, तेरी कैसी जवानी है। दिल अपना मत लगाओ तुम, कब्र में जा बनानी है। अजीजो दोस्तो यारो, ये दुनियादार फानी है। दिल अपना मत लगाओ तुम, कब्र में जा बनानी है। لا إله إلا الله محمد رسول الله، دعا کر لیجئے. سبحان ربي العلى الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.